शांति। आज हम सबके दिलों में साकार ब्रह्मा बाबा की विशेष स्मृतियां, हरेक के ब्राह्मण आत्मा के नयनों में उनकी यादें समाई हुई हैं। भले आप सभी शांतिवन में बैठे हैं, लेकिन पांडव भवन के चारों धाम जिन्होंने देखे हैं उनको बार बार स्मृति में आते हैं। ब्रह्मा बाबा 52 से 69 तक पांडव भवन, जहां पर अभी मुख्य केंद्र है, हेडक्वार्टर है, वहां रहे, तपस्या की, बच्चों की पालना की और वहां से ही हम सब का आवाहन किया। देश विदेश में जो आज लाखों बच्चे हैं, सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा ने संकल्प से आप सबको पहले से ही याद किया, आवाहन किया और आज इतनी सारी संख्या में ब्राह्मण बच्चे देश और विदेश में फरिश्ते रूप में छाए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा इतनी सारी कारोबार करते हुए, इतनी जवाबदारियां संभालते हुए कैसे संपन्न बन गए, क्या किया उन्होंने जो संपन्नता को प्राप्त किया, संपूर्ण बने। और पिछले 49 साल से, 49 ईयर्स से अव्यक्त रूप में हम सभी की पालना कर रहे हैं। कितनी श्रेष्ठ नंबर वन आदि पिता की आत्मा, जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में अंतर नहीं किया जा सकता। भक्तों ने तो साथ में मिला करके कह दिया कि भगवान ही श्री कृष्ण है। इस आत्मा के भविष्य के रूप को ही उन्होंने भगवान कह दिया और उसको ही गीता ज्ञानदाता कह दिया। लेकिन संगम युग पर इतना सत्य गीता का ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से दिया है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है। मैं तो जब 49 ईयर्स की मुरलियां अध्ययन करता हूं अव्यक्त, मैं समझता हूं शायद ही कभी कोई ने इतना गहरा, इतना राजयुक्त, इतनी ऊंची धारणाएं, हर गुण, हर शक्ति, हर कला, हर एक बात को अव्यक्त रूप में बाबा ने हम सबके सामने बहुत सरल शब्दों में रखा है। और सारा साहित्य छपा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कोई किताबें नहीं है हमारे पास, सब पूरी किताबें 69 से अब तक की अव्यक्त मुरलियां हैं आप सबके पास है। स्टडी करने के लिए ब्राह्मणों के पास एक खजाना तो होना ही चाहिए। संपन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा बाबा ही हमारे आगे बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। और जब उदाहरण सामने होता है तो फॉलो करना सहज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं लगती। जब ब्रह्मा बाबा एक साधारण व्यक्तित्व होते हुए, सब कुछ करते हुए, ऐसे गुप्त रीति से पुरुषार्थ करके अपने को संपन्न बनाया, संपूर्ण बनाया। और अभी तो हम सब देख रहे हैं समय कहाँ पर पहुँच गया है, अचानक बाबा कहता है कुछ भी होगा, समय की समीपता के सभी चिन्ह हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। आप सब तो रोज समाचार सुनते हैं, जानते होंगे, आजकल मीडिया इतना तेज है, जो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बहुत विस्तार से हम सबके सामने रखता है। 2018 के लिए भी बहुत सी बातें भविष्य वक्ताओं ने कही हैं, और ड्रामा अनुसार इस वर्ष जब बाबा से प्रश्न किया गया तो बाबा अचानक बोल गए कि ये समाप्ति वर्ष मना लो। ब्राह्मणों के अंदर थोड़ी सी हलचल हो गई, संकल्प चलने लगे कि बाबा ये समाप्ति वर्ष क्या समाप्त होगा। कई बातें होती हैं, बाबा के राजयुक्त महावाक्य होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं तीन चीजों का अंतिम समय से कनेक्शन है। एक, बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए, बिना प्रत्यक्षता के विनाश हो जाए ऐसा तो नहीं होगा। हर आत्मा के दिलों में इस धरा पर भगवान आ चुके हैं, आ गए हैं, वो मुक्तिदाता मुक्तिधाम ले जाने के लिए आए हुए हैं, ये आवाज चारों तरफ गूंजनी चाहिए। और सेवा के इतने फास्ट साधन बने हैं, जो आवाज गूंजने में देर नहीं लगेगी, अचानक सबके बुद्धि में आएगा। लेकिन उसके पहले मैं समझता हूं साक्षात्कार की लीला चलेगी। हमारी दृष्टि से, हमारे चलन और चेहरे से वो फरिश्ते रूप का साक्षात्कार लोगों का होगा। जैसे बाबा कहते थे, शुरू में जब स्थापना हुई, इतनी फास्ट गति से स्थापना हुई, ब्रह्मा बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, और साक्षात्कार के कारण लोग भाग भाग करके आने लगे संस्था के, कोई की परवाह नहीं की। विघ्न आए, परीक्षाएं आई, लेकिन उन सब में बाबा अचल अडोल रहे, क्योंकि शिव बाबा का पार्ट, स्थापना का पार्ट चला, यज्ञ की स्थापना हुई। कितना विस्तार हो चुका है, जो बाबा ने टारगेट दिया था, बच्चे पहले 9 लाख ब्राह्मण तैयार कर लो, मैं समझता हूं टारगेट तो पिछले साल ही पूरा हो गया था। अभी जब ब्राह्मणों की संख्या निकाली जाती है तो संबंध संपर्क में तो कई हजारों लाखों आ गए हैं, लेकिन रेगुलर विद्यार्थियों में भी 9 लाख से भी अधिक पहुंच गए हैं। विस्तार हो रहा है सेवाओं का, चारों तरफ से बाबा का नामाचार भी हो रहा है, और तैयारियां तो ऐसी हैं जो प्रकृति की हलचलें हम सब देख रहे हैं। अचानक भूकंप आते हैं, बाढ़ें आती हैं, सुनामी आते हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, प्राकृतिक तांडव बहुत फास्ट गति लेता जा रहा है, और जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं वो तो एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, बटन दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। होना तो वही निश्चित है, लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं रहो, डेट को निश्चित नहीं करो किस डेट को होगा, कल होगा, परसों होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, अचानक कुछ भी हो, लेकिन आप बच्चे अपनी संपन्नता को पहले प्राप्त करो। संपन्नता के आधार से प्रत्यक्षता होगी, और प्रत्यक्षता के साथ जो आत्माएं अलबेली रही हैं, जिन्होंने पालना और पढ़ाई लेने के बाद, पढ़ने के बाद पालना लेने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, अलबेले रहे, दूसरों को देखते रहे, उनको पश्चाताप बहुत होगा कि मैंने अपना समय ऐसे ही गंवा दिया। इतनी सावधानियां, इतनी क्लासेज, इतने सब हमको प्रोग्राम मिले, लेकिन मैं अलबेला रहा, मैंने समय को नहीं पहचाना, बाबा के पार्ट को नहीं पहचाना, बाबा की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया, तो पश्चाताप की घड़ियां बहुत विकट होती हैं। होती थोड़े समय की ही हैं, क्योंकि बाबा तो रहम का, दया का सागर है, कहता है मैं बच्चों का पश्चाताप कैसे देख सकता हूं। तो एक तरफ जय जयकार, एक तरफ हाहाकार, और तीसरी तरफ परिवर्तन, धड़ाधड़ विनाश होना ही है, निश्चित है। अब उसके लिए हम सबको अपनी संपन्नता की स्टेज को समीप लाना है। क्या पुरुषार्थ करें, ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? संपन्नता की एक बहुत सुंदर निशानी, आप सब कोई चीज, माताएं विशेष कोई भोजन हलवा बनाती हैं, जब वो संपन्न होता है, पक पक करके तैयार हो जाता है, तो किनारे छोड़ देता है, फिर लगता नहीं है, लगाव नहीं होता, अपने आप सब किनारे छोड़ करके अलग हो जाता है, तले में चिपकता नहीं है, यही ना संपन्नता, कहते पक के तैयार हो गया। तो ऐसे ही हम सब ब्राह्मण आत्माएं चेक करें कि अगर हमारा पुरुषार्थ संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये जो सूक्ष्म कर्म बंधन की रस्सियां हैं, जो देह संबंध पदार्थ संस्कार आदतें, जिनमें बुद्धि भटक रही है, अटकी हुई है, लटकी हुई है, क्या उन प्रभावों से मैं आत्मा मुक्त होती जा रही हूं, किनारे छोड़ रहा हूं या किनारे और पकड़ के बैठा हूं? कई तो किनारों को ही सहारा बना लेते हैं। संपन्नता के लिए ब्रह्मा बाबा ने, आपने शायद सुना होगा बाबा की जीवनी के अंदर, पढ़ा भी हो, कुछ समय से बाबा ऐसा गहरा पुरुषार्थ कर रहे थे, जो सब आकर्षणों से मुक्त, सेवाएं करते हुए न्यारे प्यारे उपराम दृष्टा, बहुत सारी विशेषताएं ब्रह्मा बाबा की अंत समय की रही हैं। मुरली सुनते पहले गीत बजता था, बाबा ने कहा बच्चे ये गीत ईत क्या है, बंद करो, इसकी जरूरत नहीं है। अमृत वेले सब बाबा के पास जाते थे, बाबा से गुड मॉर्निंग करते थे, बच्चे गुड मॉर्निंग आवाज में आने की क्या जरूरत है, ये मुख की आवाज अभी अच्छी नहीं लगती। बाह्य मुक्ता के जो भी कर्म थे, साकार में ब्रह्मा बाबा बहुत कुछ खेल पाल भी करते थे, बच्चों के साथ हंसते बहलते खेलते, बैडमिंटन बाबा का स्पेशल खेल था, बच्चों के साथ आते थे तो खेलते थे, कभी कभी बैठ जाते थे बच्चों के साथ और भी दूसरे खेल कर लेते थे, बहुत रमणीकता भी थी, मिलनसारिता भी थी, बच्चों को बहलाना है, रिफ्रेश करना है, तो कई विधियां थी बाबा के पास। लेकिन जिस दिन से एकदम संकल्प कर लिया मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उस दिन से उपराम हो गए, उस दिन से दृष्टा बन गए, कहीं पर भी बुद्धि खिंची नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कार्य किए, सब सेवाएं संभाली, अंत तक किए, लेकिन किसी में भी फंसे नहीं, डिटैच न्यारे प्यारे अंतर्मुखी महसूस नहीं होने दिया कि बाबा को इतना गहरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन संपन्नता के लिए बाबा ने हर बात से किनारा कर लिया। बाबा बाहर जाते थे सेवा पर, बाबा ने बड़े युक्ति से अपने को मुक्त किया कि बच्चे इस रथ में तो भगवान बैठा है, शिव बाबा है, लोग तो कैसे कैसे दुनिया में रहते हैं, अब शिव बाबा को लेकर के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। मधुबन में ही बाबा रहे लास्ट दिनों में, एक साल तक कहीं नहीं गए। बहुत अच्छी गहन तपस्या की, सवेरे सवेरे उठ करके बच्चों को पहाड़ी पर, पांडव भवन में ही पहाड़ी थी जहाँ अभी ऑफिस बने हैं, वहीं एक पहाड़ी थी जहाँ भी ओम मेडिटेशन हॉल बना है वो भी एक पहाड़ी थी, वो तो हम लोग जब आए हैं उसके बाद तोड़ के बनाया है। वहाँ पर खड़े हो जाते थे और सबको सामने दृष्टि देते थे, योग कराते थे। अमृत वेले खुद बाबा योग कराने पहुंच जाते थे। योग के ऊपर बहुत गहरा ध्यान, एकाग्रता का बहुत अच्छा ध्यान, संपन्न बनना है इसलिए बाबा ने एकदम दृष्टा बन करके पाठ बजाना शुरू कर दिया। मैं मेरा तू तेरा सब बातों से बाबा ने अपने को फ्री कर लिया। कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कभी ये नहीं कहा बच्चे मैं सबको पढ़ाता हूं तो मुझे याद करो, बच्चे इसका फोटो क्या रखते हो, तो मिट्टी है। शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता, उसका तो फोटो निकाल ही नहीं सकते हो, ना फोटो खींचने दिया, ना कोई फूल मालाएं स्वीकार की, न कोई वैभव इकट्ठे किए, न कोई साधनों के पीछे गए, एकदम न्यारे प्यारे उपराम। और उपराम होते हुए भी बच्चों की इतनी अच्छी पालना, पढ़ाया भी, मुरली भी रोज सुनाई, एक दिन भी मिस नहीं किया। लास्ट दिन में मिस करके, सुबह तबीयत थोड़ी ठंडी थी, बहुत ठंडी भी वैसे थी, तो दादी ने कहा बाबा रोज तो आप मुरली सुनाते हो, आज आप रेस्ट कर लो, मैं सुनाने जाती हूं। तो बाबा उस दिन सवेरे एक दिन मुरली सुनाने नहीं आया, लेकिन फिर भी बाबा को अंदर से आया कि आज बच्चों को मुरली नहीं सुनाई है, खजाना नहीं दिया है बाबा ने, जल्दी बच्चे बुला लो, आज सवेरे जल्दी बुलाओ शाम के समय। वैसे 9 बजे क्लास होता था, उस दिन बाबा ने 8:30 बजे बुला लिया, आधा घंटे पहले बुलाई और बहुत अच्छी तरह से मुरली सुनाई। उस मुरली में भी बाबा कैसे गुप्त रीति से कह रहे हैं, बच्चे देह मान तो बहुत कड़ा है, उसको जीतना कोई सहज नहीं है, मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत का पुरुषार्थ है, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, जितना हो सके देही अभिमानी रहना। और जो देही अभिमानी रहते हैं वो निंदा स्तुति मान अपमान में समान रहते हैं। अगर आपकी कोई निंदा करे तो भी समझना वो हमारा मित्र है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। बहुत सुंदर प्यार से शिक्षाएं दी आधा घंटे, और उसके बाद दरवाजे पर जाके बच्चे नम्रचित रहना, बहुत नम्रता से निमित्त भाव से चलना, अच्छा बच्चे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होकर चलना, विदाई छुट्टी। अब ऐसे शब्द उच्चारण करके बाबा गया है कमरे में, बाबा को सब पता है मैं अब संपन्न बनाऊं, पंछी उड़ेगा, लेकिन कोई को पता नहीं करने दिया। सुना है कहानियां, कल शायद उषा बहन भी सुना रही थी और बहनों भी सुना रही थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्लासेज से मिल रही हैं, लेकिन किन बातों का हम सब ध्यान रखें जो हम उस संपूर्णता की संपन्नता की मंजिल को प्राप्त कर लें। क्योंकि हमारी पढ़ाई का जो लक्ष्य है ब्राह्मण से स्वरूप में, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, फरिश्ता संपूर्ण ही संपन्नता की निशानी फरिश्ता स्वरूप है। तो हम सबके इस ब्राह्मण जीवन का जो संपूर्ण लक्ष्य है वो लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। और फरिश्ता बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है, बहुत शुद्ध हल्के संकल्प चाहिए, कोई भी भारीपन बोझ नहीं चाहिए, कोई चिंताएं नहीं, कोई फिक्रात नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। जो जहां पर भी बुद्धि फंसी हुई है, मेरे में मेरे स्वभाव है, मेरे संस्कार हैं, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, सूक्ष्म में अहम है, मैं और मेरे से बिल्कुल जब हम न्यारे बनते जाते, उपराम हो जाते, तो हम लाइट के ड्रेस को धारण कर सकते हैं। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को अपने इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए सदा ध्यान रखना है कि मुझे देवता बनने के पहले ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। फरिश्ते चलते कैसे हैं, फरिश्ते खाएंगे कैसे, फरिश्ते सेवा कैसे करेंगे, जब उनका इस फर्श पर पांव ही नहीं है। देवताएं तो फिर भी इसी फर्श पर होंगे, फरिश्ते तो सदा उड़ते हुए दिखाते हैं, सदा सेवा में दिखाते हैं। ऐसी उड़ती कला अगर सचमुच इस लक्ष्य को हम इस ब्राह्मण जीवन में स्मृति में रखते हैं कि मुझे इस अंतिम संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो बहुत से कर्म बंधनों की रस्सियां अपने आप कट जाती हैं। कई प्रकार के बंधन हम स्वयं क्रिएट करते हैं, मैं आकर के, मेरे में आकर के बंधन बनाते जाते हैं। लेकिन हम सब की बुद्धि में अभी रहना चाहिए, जब वापस चलने का समय है और अचानक बाबा ले जाएगा सबको, तो कौन से बंधन ऐसे हैं जो अभी तक खींचते हैं। कहते हैं जब कोई मक्खन से बाल निकाला होता है तो ऐसे निकल जाता, सट से निकल आता है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर से निकले, जो कोई भी चीज खींचे नहीं। क्या इसके लिए हम सब ने इतना अशरीरी बनने का अभ्यास किया है, इस देह से डिटैच रहने का अभ्यास? मैं समझता हूं आप सभी यहां आते हैं, मधुबन में आते हैं, सेंटर्स पर भी बड़े अच्छे अच्छे बाबा के कमरे बने हुए हैं, योग रूम हैं, और कई भाई बहनों ने अपने घरों में बड़े अच्छे तपस्या के स्थान बनाए हैं। उस स्थान पर बैठ करके ऐसी गहन तपस्या की जाए जो देह और दुनिया बिल्कुल भूल जाए, सब बातों से बुद्धि किनारा कर ले। जितना हम इस शरीरी स्टेज का अभ्यास बढ़ाएंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना फरिश्ता स्थिति सहज बनेगी। कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, बाबा के पास इतनी सब जवाबदारियां होते हुए भी बाबा का ध्यान था। मुरलियों में आप सब सुनते हैं, इतने बच्चे आएंगे, इतना बड़ा हाल चाहिए, इतने मकान चाहिए, बच्चे ये जो स्थान है ना, क्योंकि उस समय तो पांडव भवन ही था, बच्चे जैसे ट्रेन में तीन डब्बे, एक डब्बे में तीन सीट होती है ना सोने की, ऐसे बच्चों के लिए कमरे बना देंगे। एक एक कमरे में चारपाई की बजाय ऐसे बना दो जो एक ही फ्लोर में तीन लोग सो जाएं, ऐसे प्लान चलता था बाबा का। इतने बच्चे आएंगे, बाबा को जैसे दूरदृष्टि से बाबा देखता था, इतने बच्चे भीड़ लगेगी, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे चलेंगे, अरे बच्चे आबू रूट तक क्यों लगेगी, इतनी प्लानिंग, इतने सारे विचार बाबा को रहते थे, ख्याल रहते थे। और कई बार कहता था बच्चों को, जो मिलता था ना बच्चे, जिसके मत्थे माँ मिला उसको नींद कहाँ से आए, ये ब्रह्मा बाबा पर तो बड़े मामले, तुम बड़े भाग्यशाली बच्चे हो, तुम्हारे पर तो कोई मामले नहीं है। बाबा को इतने बच्चियाँ, इतने बच्चे, इतने सेंटर्स, इतनी समस्याएं, इतनी बातें आती हैं, सबको इसी को फेस करना पड़ता है। और सब कुछ करते हुए बेफिक्र बासा, चेहरे पर कुछ नहीं है, गम कुछ नहीं है, न्यारा प्यारा खुशनुमा, कैसे स्थिति बनाइए। बाबा के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दिया, बाबा बैठा है। हम दादी जी को देखते थे, दादी प्रकाशमणि जी को पूछते थे सभी भाई बहन, अखबार वाले भी आके पूछते थे, दादी आपके ऊपर इतनी जवाबदारियां हैं, इतनी सारी बहनें हैं, कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आपको नींद आती है? तो दादी कहती थी, मेरे थोड़ी हैं, मैं हेड नहीं हूं जो मेरी हेडक हो जाए, हेड तो ऊपर वाला बैठा है, उसके बच्चे हैं वो जाने, मुझे क्या चिंता करनी है। इतना अंदर का फेद था कि बाबा की रचना है, बाबा का बच्चे आ रहे हैं, विस्तार हो रहा है, वही संभालेगा। उस विस्तार में सार स्वरूप की स्थिति बनाई, यह है संपूर्णता की निशानी। हम लोग कई बार इतना विस्तार कर रहे हैं, विस्तार हो रहे हैं, सेंटर्स बढ़ रहे हैं, रिट्रीट सेंटर बढ़ रहे हैं, सेवाएं बढ़ रही हैं, चलो अलौकिक परिवार में विस्तार हो रहा है, वो तो बाबा देख के खुश होता है, बछड़े वाला है ना, इतने बच्चे होते हैं तो खुश होता है। लेकिन लौकिक में भी लोग अपने अपने धंधों में इतना फंसते जा रहे हैं, पता नहीं उनको घर जाना है या नहीं जाना है, इतना विस्तार, कहते टाइम ही नहीं मिलता, योग लगाने का टाइम नहीं, अरे कईयों को तो खाना खाने का टाइम नहीं, क्या करोगे इतना सब कमा करके, कहाँ फंसे हुए हो। सोचो, विचार करो, कर्म बंधन की रस्सियों को ज्ञान योग की कैंची से काटना है, और जब तक कैंची से इन कर्म बंधन की रस्सियों को काटेंगे नहीं, तब तक संपन्न नहीं बन सकेंगे। संपन्न बनने वाली आत्माएं बहुत ध्यान रख करके, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है, छोड़ नहीं देना, लेकिन शरीर निर्वाह के कर्म करते हुए भी बहुत हल्के रहो, बहुत लाइट रहो। बाबा तो साकार में कहते थे, अरे बच्चे अगर खाने पीने के लिए है तो क्यों लफड़ों में फंसते हो, सेवा करो, बाबा के कार्य में लग जाओ। बहुत समझदार बनकर के, इस कलयुग का अंतिम समय है, अगर सचमुच संपूर्ण निश्चय है तो अब विस्तार में बुद्धि न जाए। चार शक्तियां बहुत मदद करती हैं संपन्नता में। सबसे पहली शक्ति है समेटने की, दूसरे रूप से बता रहे हैं संपन्न बनने के लिए, जितना बुद्धि का विस्तार है, सेवाओं का विस्तार है, लौकिक अलौकिक जवाबदारियों का विस्तार है, हिसाब किताब का विस्तार है, बहुत सारा विस्तार है, बट वृक्ष की तरह फैला हुआ। अगर संपन्न और संपूर्ण बनना है तो उस विस्तार को सार में, बिंदु में संभालो। बीज में सब समा जाता है ना, बीज में समा गया, बीज जब उगता है, वृक्ष पैदा होता है, कितना बड़ा वृक्ष निकल आता है, लेकिन जब अंत आता है उस बीज का, तो फिर बीज बन करके उसी में सब शक्ति समा जाती। तो हम सब ने आदि से, सतयुग से लेकर के अभी तक इस बीज से वृक्ष बनाया, बहुत विस्तार किए, संबंधों का विस्तार कितना है, पदार्थों का विस्तार कितना है, नौकरी टोकरी सेवाएं बिजनेस, इसका विस्तार कितना है। अगर विस्तार में जाओगे तो आप देखोगे तो विस्तार तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर इस संगम के समय पर समेटने की शक्ति को धारण कर लो, एक सेकेंड में चारों तरफ के बुद्धि के विस्तार को एक बीज में संभालो, मैं आत्मा बीज हूं, आप इस देह से डिटैच हो जाएंगे, आपको लाइट का कवच मिलेगा, लाइट की ड्रेस मिल जाएगी, वही फरिश्ता ड्रेस है। जिनकी बुद्धि विस्तार में बहुत भटकती है, वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए जितना जरूरी है उतना करना है, शरीर निर्वाह के लिए करो, बिजी रहो, खूब बिजी रहो, ताकि व्यर्थ को आने की चांस ही नहीं मिले। क्यों व्यर्थ आए, इतना अपने आप को, मन को, बुद्धि को बिजी कर दो। जिसके अंदर कोई कला होती है, विशेषता होती है, वो विशेषताओं को ऐसे यूज करता है, लिखने में, पढ़ने में, कोई अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं चित्र बनाने में, कहीं ना कहीं बुद्धि बिजी है, तो इधर उधर की बातों से मुक्त है, फ्री है। बिजी रहने की मना नहीं है, लेकिन फंसने की मना है, उलझना नहीं है। कईयों के हिसाब किताब देख करके कई ब्राह्मण फट से हलचल में आ जाते हैं, ये क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, यहां न्याय नहीं मिला, इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया। अगर आश्चर्य की मात्रा भी लगा दी तो फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन मार्क तो बहुत बड़ी बात है। बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम समय है, 84 जन्म आप लोगों ने पार्ट प्ले किया है, बहुत सारे हिसाब किताब बनाए हैं, बहुत ऐसे कर्म बंधन की रस्सियां बनी हैं जिनके परिणाम से आप सब एक दूसरे के चक्र में फंसते आए हैं, ये समय है चुकतो होने का। सब हिसाब चुकतो होंगे और आपको उड़ करके बाबा के पास जाना है। इसलिए किसी के भी हिसाब किताब को देख करके क्वेश्चन मार्क नहीं लगना। अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो बाबा कई बार एक बड़ी रमणीक बात कहते हैं, अगर क्वेश्चन की क्यू में चले जाएंगे तो चंद्रवंशी के घराने में पहुंच जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन नहीं, सब फुल स्टॉप। और जिसने सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस कर ली, वो कैसा भी पेपर आएगा वो पास हो जाएगा। पेपर तो बहुत बड़े बड़े आएंगे, हर एक के सामने परीक्षाएं आएंगी, चाहे वो शरीर का हो, चाहे संबंधों का हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे प्रकृति का, चाहे परिवार का, किसी का भी पेपर आ सकता है। परीक्षाएं ना आए स्टूडेंट के आगे तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। परीक्षाएं आती हैं, आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं में हलचल ना हो। संपन्नता सागर का प्रतीक है। अगर मैं आत्मा संपन्नता के समीप जा रही हूं तो जैसे सागर भरपूर है, किससे भरपूर है, वो तो जल से है, लेकिन ये आत्मा जो मास्टर सागर है वो ज्ञान से भरपूर है, सर्वशक्तियों से भरपूर है, नॉलेज फुल है। और जब नॉलेज फुल है तो क्वेश्चन कहां से आया, जानता है। हर आत्मा का अपना पार्ट है, कुछ किया है पिछले जन्म में इसलिए वो पेपर उसके सामने आया है, पार हो जाएगा। अगर उसने एक बल, एक भरोसा, एक बाबा को साथी बनाया है तो परीक्षाओं में हिलने की जरूरत नहीं है, पार कर देगा बाबा, है साथ। लेकिन अगर अपने पेपर्स में या दूसरों के पेपर्स में देख करके हलचल में आ गए, हलचल वहां होती है जहां पर खाली होता है स्थान। आप मटके में पानी भर के जाओ, अगर फुल मटका भरा हुआ है तो हिलेगा डुलेगा लेकिन बिल्कुल स्थिर रहेगा, ज्यादा उसमें हलचल नहीं होगी। और खाली होगा, आधा होगा तो आपको बेला देगा। इसलिए ज्ञान से बहुत अच्छी तरह से भर के रखो बुद्धि को। ड्रामा का इतना वंडरफुल ज्ञान बाबा ने दिया है बच्चे, हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर बात में कल्याण है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता है। कोई भी सीन आती है बच्चे, फुल स्टॉप लगाने के लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इस ड्रामा के ज्ञान को यूज करो। अगर सचमुच संकल्पों को शांत रखना है, हलचल में नहीं आना है, तो स्वयं में, बाबा में, बाबा की पढ़ाई में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और ब्रह्मा बाबा उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल थे, दादियां उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कभी भी हलचल में नहीं आती। पेपर आते हैं बहुत बड़े बड़े, विस्तार यज्ञ का हो रहा है, कई बातें आती हैं, बाबा बैठा है, बाबा का कार्य चल रहा है, आएंगी बातें, खत्म हो जाएंगी। आप अपनी स्थिति को बिगाड़ो नहीं, योग करो, प्रयोग करो। दादी जी कहती थी, कोई भी पेपर आता था वर्णन नहीं करती थी, चलो अभी सब उठो, 1:30 बजे उठ करके 2 बजे से 5 बजे तक तपस्या करो, योग ही सब विघ्नों को अपने आप पार कर देगा। चिंतन करना शुरू कर देते, ये हुआ, ऐसा हुआ, यहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, इस बहन ने ये किया, उस भाई ने किया, अरे कुछ भी कोई कर रहा है, उनका पार्ट है, उनका हिसाब किताब है, मुझ आत्मा को उस बातों में नहीं जाना है। अगर मेरा लक्ष्य, मेरा गोल मेरे सामने है, मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना ही है, तो उसके लिए अचल स्थिति बनाओ, कुछ भी हो रहा है होने दो। अगर बहुत जवाबदारी समझते हो अपने आप के, तो सबसे बड़ा अच्छा जवाबदार वो माना जाता है जो बहुत अच्छी शुभ वृत्तियां रखता है, जिसके विचार बड़े शुभ हैं, शुभ चिंतक है, अच्छे अच्छे विचार करो, अच्छी भावनाएं रखो, कुछ समय बैठ करके उसको मनसा का दान दो, योग के प्रयोग करो, ये है शुभ चिंतक वृत्ति। हमारी शुभ भावना है ये ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे, एक की बात सुनी दस को सुना दिया, उसे तो वायुमंडल बिगड़ जाता है ना, इसलिए बहुत अटेंशन रखना है। कहते हैं अपनी मस्ती में मस्त रहो, जितना अपनी मस्ती होगी, अपना चिंतन होगा, अपने को आदि और अनादि गुणों से संपन्न बनाने का ये समय है, हम अपने इन गुणों से संपन्न बन जाएं, क्योंकि हमारा जो गोल है, इस पढ़ाई का जो मूल लक्ष्य है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सभी इस पढ़ाई के इस एम ऑब्जेक्ट को सामने रख करके। लक्ष्मीनारायण तो बनने वाले बनेंगे ही, कोई से पूछो क्या बनोगे, लक्ष्मीनारायण बनेंगे। ये लक्ष्मीनारायण सब बन जाएंगे क्या, प्रजा भी तो होगी, घराना भी होगा, वो तो एक बनेगा। लेकिन हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है कि हर एक आत्मा संपन्नता को प्राप्त करे। संपन्नता भी हर एक की अपनी अपनी स्टेज के अनुसार होगी, सब एक जैसे नहीं बनेंगे। माला 108 की मली बनी हुई है, और वो विजयी माला भी 108 नंबर में पहला दाना और दूसरे दाने में अंतर होगा, कुछ न कुछ अंतर होगा। तो कहें हम एक जैसे सब बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन संपन्नता और संपूर्णता को गुणों में, पवित्रता में, मर्यादाओं में हमें अपनी स्टेज अनुसार परफेक्ट बनाना है। लक्ष्य इतना ऊंचा रखना कि मुझे सर्व गुणों में संपन्न बनना है, सर्व शक्तियों में संपन्न बनना है, सर्व कलाओं में संपन्न बनना है, और उसके लिए जितना समय मिलता है अपने आप से बातें करो, अपने आप को पढ़ाओ। जो अपना शिक्षक बन जाता है वो अपने आप को सहज चेंज कर सकता है, और जो दूसरों पर आधारित रहता है उसको जैसा बहने कहेंगी, जैसा निमित्त कहेंगे वैसा करेगा, और फिर वैसे के वैसा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये हमारी पढ़ाई बहुत व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत हर एक को सर्व दिव्य गुणों से संपन्न बनना है। देखो अगर मैं राजाई घराने के लायक हूं, मुझे इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है, क्या वो रॉयल संस्कार, वो रॉयल्टी, वो पर्सनैलिटी, रॉयल्टी किस चीज की चाहिए? चेहरे पर दिव्यता और रूहानियत, इसकी रॉयल्टी चाहिए। अगर इस चेहरे में बहुत बाहिमुखता है, बहुत हंसी मजाक है, बहुत सारी बातें आती हैं लौकिकता वाली, तो वास्तव में वो ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी नहीं है। हम सब बहुत बाबा के रॉयल बच्चे हैं, रॉयल लोगों की आंख भी कहीं नहीं जाती, छोटी छोटी चीजों में, किसी की चीजों में दृष्टि नहीं जाती। इसलिए हम सब बहुत ऊंचे सम्मान में रहें कि अगर हम सचमुच राजाई घराने में जाने वाली आत्माएं, देव पद को पाने वाली आत्माएं, संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, तो रूहानियत, दिव्यता और पवित्रता की पर्सनालिटी, दृष्टि में वो रूहानियत दिखाई दे, बोल में वो मधुरता दिखाई दे, चलने में वो बहुत रॉयल्टी। दादा हमारे थे ना, विश्वरतन दादा, कोई जोर से चलता था कहते थे भाई इधर आओ, ये धरती माँ को क्यों तंग कर रहे हो, धीरे धीरे चलो। इतनी रॉयल्टी से पैर की भी चप्पल की भी आवाज नहीं होनी चाहिए। अरे फरिश्ता बनने वाले हो, आवाज करते हो, आज 10 लोग 15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मार्केट खुल गई। बहुत ध्यान रखना, हम सब अंतर्मुखता की गुफा में चले जाएं। कल का दिन जो है बाबा की मिलन का विशेष दिन है, वरदानी दिन है। आप सब ऐसे दिवस पर आए हो जो बाबा कहते हैं इस दिन तो भोलानाथ बच्चों के ऊपर बहुत राजी रहता है, जो वरदान चाहे ले सकते हो। यही आस नहीं रखो बाबा नहीं आएगा, बाबा नहीं आएगा, ये कौन से संकल्प नहीं आएगा, इतने सारे बच्चों का प्यार, इतने सारे बच्चों की भावनाएं बाबा को वतन में शांति से रहने देंगी क्या? लेकिन वो संकल्प नेगेटिव करके बाबा नहीं आएगा, दादी है नहीं, वहां बैठी है, ये है वो, अपने संकल्प लेकर के क्यों विचार कर रहे हो? आप उस कोने में बैठे हो और यहां पर वीडियो भी चल रही होगी, बाबा आपको साक्षात्कार करा दे, मैं यही हूं बच्चे, नहीं हो सकता है क्या? वो तो जादूगर है, क्या नहीं करा सकता है। लेकिन आप उस स्थिति में स्थित होकर के बैठना, बहुत प्यार से बाबा का आह्वान करो, मिलन मनाओ, सूक्ष्म वतन से साकार वतन में आने में उसको टाइम नहीं लगता। कई बार बड़े अच्छे अच्छे अनुभव बाबा के बच्चे यहाँ से करके जाते हैं। तो आप सभी अपनी ऐसी अमृत वेले से स्थिति बना लो कि भले बड़े सब बहुत आवाज में आते हैं, मुझे तो अंतर्मुखी उस गुफा में बैठ करके तपस्या करनी है, मुझे ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बन करके ही रहना है, शरीर में होते हुए भी शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करना है, न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास करना है, लगाव मुक्त स्थिति क्या होती है उसका अनुभव करना है, कोई मेरा नहीं, कोई मेरी नहीं, ऐसी स्थिति अगर बन गई कितनी आकर्षण मूर्त बन जाएगी। जैसे चंद्रमा जब अपनी संपूर्णता में होता है, संपन्नता और संपूर्णता, कोई प्रश्न करते हैं संपूर्णता और संपन्नता में क्या अंतर है? जब हम पुरुषार्थ करते करते सर्वगुणों में, सर्वशक्तियों में, सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाते हैं तब संपूर्ण हो जाते हैं। संपूर्ण स्टेज 16 कला वाली संपूर्णता की कहलाती है, संपन्न तो धीरे धीरे हो जाते हैं। तो संपन्न बनते बनते जब हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तो जैसे चांद सबको उसकी चांदनी आकर्षण करती है, ऐसे वो संपूर्णता की स्टेज सबको बहुत प्यारी लगती है, बहुत आकर्षण मूर्त आत्मा बन जाती है, उसके प्रति सबका प्यार होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा दादियों को हम सब कहते हैं मेरी दादी, मेरा बाबा, वो जो मेरापन आ जाता, वो मेरापन बहुत आकर्षणमय है और वो है संपूर्णता की सबसे बड़ी विशेषता। सबके बीच में रहते हुए इतने दिव्य गुण आ जाए, इतना स्नेह युक्त वातावरण बन जाए, हर आत्मा जब निर्दोष दिखाई देने लगे, इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करना सभी, हर आत्मा निर्दोष दिखाई देने लगे, कोई किसी का दोष नहीं है, क्योंकि अगर मेरी दोष दृष्टि बन गई तो गुणों में कोई ना कोई घुन लग जाएगा। ध्यान देना, मुझे किसी के कमी कमजोरी को, दोष को नहीं देखना। इस सृष्टि मंच पर हर आत्मा निर्दोष है, कोई कारण कोई परवश स्थिति उससे कुछ गलत करा भी अगर रही है ठीक हो जाएगा, शुभचिंतक रहो, बाबा ठीक करेगा। ऐसी निर्दोष दृष्टि संपन्नता की सबसे अच्छी निशानी है। और बाबा ब्रह्मा में दादियों ने वो स्थिति बनाई, सबको बहुत स्नेह दिया, अपना समझा, अपनेपन की फीलिंग दी, अपनेपन का प्यार दिया, पालना दी, और अपनेपन के प्यार और पालना से इतना अच्छा आगे बढ़ाया, मैं आगे बढ़ूं, ये आगे बढ़े, ये क्यों बढ़ गया, किसी से भी कोई नहीं दोष नहीं रखा, किसी की ग्लानि नहीं की, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखी। तो ऐसी दादियां जो संपन्न संपूर्ण बनी, बाबा बने, हम सब ने इन आंखों से देखा है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद जितने पुरुषार्थ साकार में किए थे वो सब बातें कदम के रूप में सुनाई हैं। बाबा कितना अलर्ट थे, कितना एक्यूरेट थे, कितने ऑलराउंडर थे, कैसे सत्यता की अथॉरिटी थे लेकिन नम्रता के अवतार थे, सरल चित नेचर थी, शिक्षादाता के साथ साथ क्षमा रूप थे। ब्रह्मा बाबा के कदमों पर आप ध्यान देंगे तो ब्रह्मा बाबा ने इन्हीं कदमों के आधार से संपन्नता को प्राप्त किया, संपूर्ण बन गए, और हम सभी बच्चे भी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके संपन्न बने। इतना ऊंचा लक्ष्य रखो कि इसी जीवन में मुझे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करके विश्व कल्याण की सेवा में मदद करनी है, संपन्न और संपूर्ण बनना और बाबा के साथ उड़ करके चलना है। समीपता का समय तो हम सब देख रहे हैं और अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, तैयारी है हम सब तैयार हो जाएं। इसलिए कोई भी ये वेट नहीं करो कब होगा, हम अपनी कमी कमजोरियों का समाप्ति वर्ष मनाएं, फिर विश्व के परिवर्तन में बहुत फास्ट गति आएगी और हमारी आने वाली दुनिया इस धरा पर आकर के सबको सुख शांति संपन्न भव का वरदान दे देगी। हर आत्मा के अंदर वो सब दिव्य गुण आ जाएंगे तो ये भारत देवभूमि बने, स्वर्ग बने, इससे दुख का शांति, कलयुग का कलह कलेश और काली रात पूरी हो, इसके लिए हम सब अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना लें। ठीक है, ओम शांति। आप सभी ध्यान रखना, कल अव्यक्त दिवस है, बहुत गहरी शांति का अनुभव होना चाहिए।